अयि मित्रगणाः स्वागतं व्याहरामि। अद्य पुनरपि आगच्छति रविवासरः, तदा अहं लीना महेन्द्रे पुनरपि आरम्भं करोमि अस्माकं प्रियकार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति। दशावतारस्य कथायां सप्तम अवतारस्य अर्थात् श्रीराम अवतारस्य कथा। महापण्डित महाकवि जयदेववर्यः लिखति, वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशव धृतरघुपतिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नमस्कार मित्रगण, तो पिछले कुछ रविवारों की तरह आज भी हम पठामि संस्कृतम कार्यक्रम के अंतर्गत महाकवि जयदेव रचित अष्टपदी, जहां उन्होंने विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है, उसमें से 7वें अवतार अर्थात श्री राम अवतार की पढ़ाई कर रहे हैं। श्री राम अवतार की कथा सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। जब गर्वोन्मत्त रावण ने सीता का हरण किया, तब श्री राम को उससे युद्ध करना पड़ा और रावण को परास्त करके तथा उसका वध करके ही श्री राम सीता को वापस ला पाए। हालांकि रावण महाबली था, महावैभव संपन्न उसकी नगरी और उसका राज्य था, उसके पास विशाल सेना थी, उसे शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उसके 10 मुख थे, इसीलिए उसे दशमुख या दशानन भी कहा जाता है, और 20 भुजाएं भी थीं। तो इस प्रकार बलशाली रावण का वध श्रीराम ने जब किया, उस घटना का वर्णन महाकवि जयदेव ने इन 2 पंक्तियों में किया है। रावण ने स्वर्ग को जीत लिया था, सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और दिक्पाल अर्थात दश दिशाओं के जो रक्षणकर्ता दिक्पाल माने जाते हैं, उन्हें भी उसने बंदी बना लिया था। इस प्रकार स्वर्गलोक के देवतागण और पृथ्वीलोक में मनुष्यगण सभी उसके कारण संतरस्त थे ही, लेकिन उनके लिए वह अजेय था, इसलिए वे विवश थे। तो महाकवि जयदेव कहते हैं, हे केशव, हे धृत रघुपति रूप, अर्थात हे रघुपति का रूप धारण करने वाले विष्णु या केशव। और रघुपति क्यों कहा गया है राम के लिए? तो राम का वंश रघुवंश कहलाता है, जहां महापराक्रमी राजा रघु हुए थे। और उन सारे रघुवंशी राजाओं में जो महान राजा हुए वह श्री राम, इसलिए राम को रघुपति भी कहा जाता है। तो हे धृत रघुपति रूप अर्थात रघुपति का रूप धारण करने वाले विष्णु, हे जगदीश, हे हरे, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुमने क्या किया कि वितरसि दिक्षु रणे, रणे अर्थात रणभूमि में, और दिक्षु अर्थात दिशाओं में, और वितरसि अर्थात फैलाते हो, फेंकते हो, और मौली का अर्थ होता है मस्तक या किरीट। तो यहाँ पर मस्तक के अर्थ में मौली शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राम ने क्या किया कि जो दशमुख था अर्थात रावण, तो दशमुख मौली बलिम, दशमुख के 10 मस्तकों की बलि चढ़ाई। और किसे यह बलि चढ़ाई? तो 10 दिशाओं के जो 10 दिक्पाल होते हैं, दिक्पति, उनके प्रति यह बलि चढ़ाई। और किस प्रकार चढ़ाई? तो रावण के 10 सिरों को 10 दिशाओं में उछाल करके यह बलि चढ़ाई। तो दिक्पति कमनीयम अर्थात दिक्पाल जिसकी कामना करते थे कि ऐसा हो, रावण का वध हो, तो उस प्रकार का वध करके मानो तुमने उसके 10 मस्तकों की बलि चढ़ाई, इसलिए यह तुमने रमणीय कृत्य किया, मन को भाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला कृत्य किया, क्योंकि रावण के त्रास से सभी कोई संतरस्त थे। तो इस प्रकार रावण के सिरों को 10 दिशाओं में उछाल करके तुमने एक अच्छा काम किया, लोगों को आनंदित करने वाला काम तुमने किया, इसलिए हे केशव तुम्हारी जय हो। मित्रों, अगले श्लोक में महाकवि जयदेव ने विष्णु के 8वें अवतार का वर्णन किया है। जयदेव ने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम, जिन्हें हलधर भी कहा जाता है, उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना है। तो उसकी स्तुति में पंडित जयदेव लिखते हैं, वह शिव पुषी विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। यहाँ पर संबोधन है केशव, हे केशव, हे धृत हलधर रूप, हे जगदीश, हे हरे। और बलराम को हलधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सदा अपने कंधे पर हल रख करके चलते थे और वही हल उनकी कृषि प्रणवता का प्रतीक था। वे कृषि तज्ञ माने जाते हैं और वही हल वे युद्ध में भी संग्राम जीतने के लिए उपयोग में लाते थे। हालांकि वह गदा युद्ध में भी अत्यंत निपुण माने जाते हैं। तो ऐसे हे धृत हलधर रूप तुम्हारी जय हो। इन बलराम का वर्णन पहली दो पंक्तियों में पंडित जयदेव ने किस प्रकार किया है वह हम देखेंगे। वहसी वपुषी विशदे, वपु का अर्थ हुआ शरीर, तो वहसी का अर्थ हुआ धारण करते हो, और वपुषी विशदे अर्थात अपने अत्यंत गौर वर्णीय शरीर पर तुमने जलदाभ अर्थात बादल के रंग के, नीले रंग के वस्त्र तुम परिधान करते हो। यहाँ वसनम का अर्थ हुआ वस्त्र और जलदाभम, जलद अर्थात जल देने वाला अर्थात मेघ या बादल, और उसकी आभा लिए हुए वस्त्र अर्थात नीले रंग के या आसमानी रंग के वस्त्र, और हलहति भीति मिलित यमुनाभम, तो तुम्हारे हति अर्थात प्रहार, तो हल के प्रहार के डर से ऐसा लग रहा है मानो कि स्वयं यमुना नदी ने तुम्हारे वस्त्रों के अंदर छिप करके शरण ले ली है, इसलिए तुम्हारे वस्त्र यमुनाभम, यमुना के सांवले जल की तरह सांवली आभा भी लिए हुए हैं। तो इस प्रकार तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं वे मेघ की आभा लिए हुए हैं और यमुना जल की आभा लिए हुए हैं। तो ऐसे हलधर का रूप धारण करने वाले केशव तुम्हारी जय हो। तो बस मित्रों, इन्हीं दो श्लोकों के साथ हम आज का अपना पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।